हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा को होश आ गया था। वेद अपनी नफरत और गुस्सा भूलकर उसे कंफर्टेबल फील करवाने में लगा था। बाकी की चौहान फैमिली भी शिवांशा से मिलने आई थी। उनके सामने वेद शिवांशा से खुलकर कुछ पूछ नहीं पाया, लेकिन वो जानना चाहता था शिवांशा ने अपने सपने में ऐसा क्या देखा था जिसके बाद वो इस हद तक बीमार हो गई थी। उन सबके जाते ही वेद को पूछने का मौका मिल गया था। वेद ने शिवांशा से सीधे सीधे उसके सपने और डर के बारे में पूछा तो शिवांशा के चेहरे पर वही डर के भाव वापस उभर आए थे। वेद उसके चेहरे के बनते बिगड़ते हर भाव को गौर से देख रहा था। वेद ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या देखा था तुमने सपने में जो इतना डर रही हो? वेद के कहते ही शिवांशा एक झटके में अपने ख्यालों से बाहर निकल आई थी, वरना फिर से वो उन पलों को जीने लगी थी। उसने जल्दी से वेद की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी नहीं देखा, मेरे मन का वहम होगा, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ था जो मैंने सपने में देखा था, मैं बस इतना डर गई थी और इनसिक्योर हो गई कि अजीब चीज़ें दिखने लगीं, और मैं उन्हीं अजीब चीज़ों के बारे में पूछ रहा हूँ बच्चा, वेद ने भौहें उठाकर थोड़ा नरमी से कहा। वेद के मुंह से बच्चा सुनकर शिवांशा का दिल मानो पिघलने लगा था। उसने जल्दी से वेद की तरफ देखा, उसकी आंखें नम होने लगी थीं। इतने प्यार से आज तक उसे किसी ने नहीं बुलाया था। मुझे अजीब लग रहा है ये बताते हुए, न जाने वो सब मुझे क्यों दिखाई दिया जबकि मेरे मन में वैसा कुछ नहीं था और न ही मेरे साथ वैसा हुआ था। मैंने सपने में देखा था कि वो मेरे बहुत करीब था, बहुत ज़्यादा पास, और वो कुछ कर रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कुछ नहीं पहना हुआ था, बस ये एक सपना ही था, फिर भी न जाने मैं क्यों इतना डर गई थी, अभी भी डर लग रहा है। शिवांशा अटकते हुए जैसे तैसे अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। भले ही शिवांशा को कुछ याद ना हो, लेकिन वेद पूरा सच जानता था। वो समझ गया था कि शिवांशा ने सपने में क्या देखा होगा। वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली थीं। वो तेज सांसें लेने लगा और इस वक्त उसके हाथों की नसें तनने लगी थीं। इससे पहले कि शिवांशा हड़बड़ाते हुए आगे कुछ और कहती, वेद जल्दी से उसके पास से उठा और बोला, तुम सही कह रही हो, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मन में उसके लिए डर है, तभी वो डर हावी होकर इस कदर बढ़ गया कि तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, ठीक होते ही हम सीधा साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सच में मैं ठीक हूँ, शिवांशा ने वेद को मना करने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। अगर तुम ठीक होती तो इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं होती, और सच में इसकी ज़रूरत है। आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, मैं डॉक्टर से बात करके आ रहा हूँ, मेडिसिन और डिनर देख लेता हूँ, कुछ नहीं खाया होगा तुमने कल से, वेद ने हल्का सख्त आवाज में कहा। वो इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहता था। वेद ने शिवांशा को वहीं पर नर्स के पास छोड़ा और फिर खुद बाहर आ गया था। उसने डॉक्टर को शिवांशा को चेक करने के लिए कह दिया था, लेकिन वो खुद इस वक्त तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर निकल आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वेद को वहां घुटन महसूस हो रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। वेद खुद के आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अंकुश ने शिवांशा के साथ जो भी किया था वो सोचकर उसका खून खौल जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये तसल्ली भी थी कि शिवांशा को कुछ याद नहीं है। आज शिवांशा ने एक छोटी सी झलक ही सही, लेकिन वो सब देख लिया था। अभी भी उसे लगता था कि वो एक सपना ही है, जबकि वो सब सच्चाई थी। वेद ने बाहर आकर गुस्से में अपनी गाड़ी के शीशे पर पंच किया। उसकी आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। कोई एक बच्ची के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? वो उसे कुछ समझ नहीं थी। पहले शिवांशा और फिर उसका भाई रोहन। अंकुश, तुमने जो भी किया है ना, आई स्वेयर, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम जैसे नीच इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। वेद गुस्से में बड़बड़ा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस समय वंश ऑफिस से फ्री होकर शिवांशा और वेद से मिलने के लिए आया था। जब उसने अपनी गाड़ी पार्क की और वेद को खुद की गाड़ी के पास देखा तो वो सीधे वेद के पास जाने लगा। वंश ने जाकर वेद के कंधे पर हाथ रखा तो वेद जल्दी से उसकी तरफ पलटा। वेद की आंखों में आंसू देखकर वंश हैरान रह गया था। वो जल्दी से वेद के गले लग गया और उसे सहलाते हुए बोला, भाई प्लीज, मैं आपको इस तरह ब्रोकन नहीं देख सकता हूँ। आप हम सबकी स्ट्रेंथ हैं, हम सबको संभालते हैं, फिर आप इस तरह कैसे रो सकते हैं? भाभी ठीक हो जाएगी और आराध्या ने बताया कि बस एक फीवर ही है।
वेद अपना दुख किसी को नहीं बता सकता था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है। वहीं वेद की आंखों में आंसू देखकर वंश को झटका सा लगा था। उनके माँ बाप के जाने के बाद वेद ने उनकी सारी जिम्मेदारी उठाई थी। ऐसा नहीं था कि वेद अकेले में इमोशनल नहीं होता था, लेकिन उसने उन सबके सामने एक सख्त व्यक्ति की ही भूमिका निभाई थी। उनके लिए वेद की आंखों में आंसू देखना काफी अनएक्सपेक्टेड था। लगभग 5 मिनट बाद वेद को थोड़ी राहत महसूस हुई तो वो वंश से अलग हुआ। वेद ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकाली। उसने पानी पीकर वंश से कहा, सब ठीक है, बस उसकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गया था। कोई बात नहीं, होता है, आराध्या बीमार पड़ती है तो मैं भी ऐसे ही परेशान हो जाता हूँ। अच्छा लग रहा है आपकी आंखों में भाभी के लिए प्यार देखकर, वो दुनिया की सबसे लकी लड़की है जिससे मेरे भाई को प्यार हुआ है, वंश ने हल्का मुस्कुराकर वेद को सहलाते हुए कहा। वेद ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर वे दोनों अंदर शिवांशा के पास जाने लगे। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे तो नर्स शिवांशा को जबरदस्ती खिचड़ी खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका वो खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे सच में भूख नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ जिद मत कीजिए, अगर मैंने ये खाया तो मुझे उल्टी होने लग जाएगी, शिवांशा उसे मना करते हुए बोली। वहीं वेद इस वक्त कमरे के अंदर आया था। उसने शिवांशा को इस तरह नखरे करते हुए देखा तो वो सख्त आवाज में बोला, अच्छा तो अब तुम्हें जिद भी करनी है, पूरे दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू बच्चा, अगर तुमने थोड़े से भी नखरे किए तो मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करवाने वाला हूँ। वेद का सॉफ्ट साइड देखकर वंश और शिवांशा दोनों ही उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे थे। वेद कभी खुलकर उसके लिए जज्बात जाहिर नहीं करता और न ही वो ये जानबूझकर कर रहा था, बस शिवांशा की तकलीफ वो खुद महसूस कर रहा था। यही वजह थी कि वो अपनी नफरत, गुस्सा सब कुछ भूल गया था। शिवांशा बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसकी तरफ देख रही थी। तभी वंश बोला, सोच लीजिए भाभी, अगर भाई किसी बात की धमकी दे रहे हैं तो वो सच में कर दिखाएंगे, जल्दी से इसे खत्म कीजिए, घर पर सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, अगर आपको यहीं रहना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत फीका है, अचानक शिवांशा के मुंह से निकला। वेद ने सिर हिलाया और उसे घूरते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में ये पिज्जा लाकर देंगे, ऐसी चीजें खाकर और बीमार हो जाओगी। शिवांशा को वैसे भी वेद से डर लगता था, ऊपर से आज तो उसका इतना प्यार से बात करना उसे जरा भी हजम नहीं हो रहा था। उसने आगे कोई जिद नहीं की और मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। उसका बना हुआ मुंह देखकर अचानक वेद के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, जिसे वंश ने नोटिस कर लिया था।
वंश ने मन ही मन कहा, अब तक हमेशा इस बात का अफसोस रहता था कि हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, लेकिन भाई को किसी पर यकीन नहीं था। उन्हें यही लगता था कि उनसे शादी करने वाली लड़की वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी जो वो चाहते हैं। हमारे चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ को काफी अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन थैंक गॉड जो शिवांशा भाभी उनकी लाइफ में आई। भाई सच में बदल रहे हैं और ये चेंज मैं हमेशा से इनके अंदर देखना चाहता था। वंश अब ज्यादा देर रुककर उनके बीच में दीवार का काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वेद से कहा, अच्छा ठीक है भाई, आप भाभी के साथ रुकिए, मैं बस इन्हें देखने के लिए आया था। डिस्चार्ज सुबह करा लीजिएगा और ऑफिस का काम सुबह मैं देख लूंगा, आप लेट ऑफिस आ सकते हो। हाँ ठीक है, वैसे भी डॉक्टर ने फिलहाल डिस्चार्ज देने से मना कर दिया है, घर पर भी सबको बोल देना कि टेंशन ना लें, वेद ने शांत लहजे में कहा। अब सच में किसी को टेंशन नहीं है, वंश ने सिर हिलाकर कहा और फिर वहां से चला गया था। वंश ने अपने कदम रूम के दरवाजे पर रखे ही थे कि उसके चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ गई थी। उसके कानों में शिवांशा और वेद की आवाज पड़ी थी। वंश के साइड हटते ही शिवांशा ने कंप्लेनिंग टोन में कहा, ये सच में बहुत बुरा है, फिर भी पूरा खत्म करना पड़ेगा, अगर ज्यादा जिद की तो एक बोल और मंगवा दूंगा, वेद ने उसे घूरते हुए कहा। कुछ ही देर में वंश वहां से घर पहुंच चुका था। वो कमरे के अंदर चेंज करके आया था। उसके दिमाग में शिवांशा और वेद ही चल रहे थे। लैपटॉप के सामने बैठे हुए वंश के चेहरे पर खोई हुई मुस्कुराहट देखकर आराध्या ने उसके कंधे पर सिर रखा और वंश का गाल खींचते हुए बोली, ये किसके बारे में सोचकर इतने स्माइल की जा रही है? भाई और भाभी के बारे में, उसने जवाब दिया। वो आगे बोला, पता है आराध्या, जब मैं हॉस्पिटल गया था तब भाई बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। जब मैं उनके पास गया था तब वो रो रहे थे। वेद के रोने की बात सुनकर आराध्या ने जल्दी से अपना सिर वंश के कंधे से हटाया। वो परेशान लहजे में बोली, क्या, लेकिन वो रो क्यों रहे थे? भाभी तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह इतना ही परेशान हो गया था। भाभी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन भाई उनके बीमार होने की वजह से इतने परेशान हो गए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज हॉस्पिटल में दोनों को साथ में प्यार से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
अब तक ये लगता था कि शिवांशा भाभी भाई से उम्र में काफी छोटी हैं, तो उनके बीच में वो कंपैटिबिलिटी और प्यार नहीं होगा। लेकिन आज सब कुछ जब अपनी आंखों से देखा तो दिल को सुकून सा मिला। आज सही मायने में ये लग रहा है कि प्यार हो तो उम्र मायने नहीं रखती है। वंश ने आराध्या को सब कुछ बता दिया था। तुम सही कह रही हो, जब हम हॉस्पिटल में गए थे तब भाभी ने भाई को हग कर रखा था और वो छोड़ने तक को तैयार नहीं थी। सोचो, वेड भाई, जिनको हग करने के लिए हम भी एक बार सोचते हैं, 10 सेकंड में भाई हमसे दूर हो जाते हैं और उसी तरह सख्त हो जाते हैं। वो लगभग न जाने कितनी देर तक शिवांशा भाभी को अपनी बाहों में समेटे हुए खड़े थे। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, चौहान फैमिली के पास सब कुछ था, अब तक उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय इस बात के कि वेद ने अपना सारा टाइम अपने भाई बहनों की परवरिश और बिजनेस को दे दिया था। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से शिवांशा आई थी तब से चौहान पैलेस में बहुत कुछ बदलने लगा था। वेद की रुकी हुई जिंदगी चल पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ वेद और शिवांशा हॉस्पिटल रूम में थे। शिवांशा ने खाना खा लिया था, वहीं वेद ने अपना खाना भी हॉस्पिटल रूम के अंदर ही मंगवाया था। शिवांशा उसे खाते हुए अजीब नजरों से देख रही थी। शिवांशा को खिचड़ी खानी पड़ी थी, जबकि वेद अच्छा खासा नॉर्मल खाना खा रहा था। उसे इस तरह खुद को घूरता हुआ देखकर वेद ने सिर हिलाकर कहा, अगर मुझे इसी तरह देखती रही तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चुपचाप दवाई लो और सो जाओ। लेकिन मेरा पेट नहीं भरा है, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने कल दोपहर को खाना खाया था। मुझे बहुत भूख लगी है और उस खिचड़ी को खाने के बाद तो मेरा पेट भी नहीं भरा, ऊपर से अजीब सा भी लग रहा है। क्या आप मेरे लिए भी अपने जैसा खाना नहीं मंगवा कर दे सकते हो, प्लीज? शिवांशा ने उसे पप्पी आई से देखते हुए कहा। वेद के सामने खुलकर अपनी बात रखने की हिम्मत उसमें कभी नहीं आ पाती, लेकिन आज वो उसे अलग लग रहा था। कल रात से ही उसका दिन बुरा था। मुश्किल से वेद का बिहेवियर नॉर्मल हुआ था, वो उसकी केयर कर रहा था, तो शिवांशा का दिल भी यही कह रहा था कि वो उसे पैम्पर करे। ऊपर से उसके पीरियड्स भी चल रहे थे। वेद ने सिर हिलाया और अपनी प्लेट उठाकर शिवांशा के पास आ गया था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, खा सकती हो, लेकिन ओवर ईटिंग मत करना, वरना फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। थैंक यू सो मच वेद, शिवांशा खुश होकर जल्दी से बोली। वेद ने शिवांशा को अपना नाम लेने से मना किया था। उसे अजीब लगता था जब वो उम्र में उससे छोटी होने के बावजूद उसे उसके नाम से बुलाती थी। वहीं शिवांशा बच्चों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थी और वेद उसे खोई हुई निगाहों से देख रहा था।